गांव आजीविका हम विषय पर हमारे साथ आज जुड़ रहे सौंसर पशु चिकित्सालय के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी कमल ध्रुवे जी। नमस्कार सर जी।
नमस्कार जी। नमस्कार
सर जी। गांव आजीविका हम विषय में आपका स्वागत है और हम आपसे आज इस विषय पर जानना चाहते हैं कि खेती किसानी के साथ पशुधन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार पशुधन पर लंपी स्किन डिसीज का प्रकोप की खबरें आ रही है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, अभी क्षेत्र में कहीं कहीं पाया गया है कि लंपी वायरस से संक्रमित पशु पाए गए हैं, है ना? तो अभी पशुपालकों से यही दिशा निर्देश है कि जब भी इससे संबंधित कोई पशु पाया जाता है तो जल्द से जल्द पशु चिकित्सालय सौसर में आकर संपर्क करें।
सर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में खेती को लाभ का धंधा बनाने के दृष्टिकोण से पशुधन महत्वपूर्ण होता है
जी,
तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में आपके विभाग के माध्यम से किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही है?
किसानों के लिए पशुपालन विभाग की तरफ से बहुत सारी योजनाएं संचालित है, जिसमें से डेयरी का स्थापना के लिए आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन योजना है, और जो किसान बकरी इकाई की स्थापना कर सकते हैं उनके लिए बैंक अनुदान पर 10 बकरी और 1 बकरे के लिए बैंक ऋण की सुविधा है। इसके अलावा पशुपालन हेतु केसीसी की सुविधा दी जा रही है, और भी बहुत सारी योजना है जिसके बारे में जानकारी लेने हैं तो किसान पशु चिकित्सालय सौसर में आकर जानकारी ले सकते हैं।
सर जी, इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को क्या क्या दस्तावेज होना आवश्यक है?
जो भी नॉर्मली दस्तावेज लगते हैं, उनका आधार कार्ड, उनका बैंक पासबुक, उनका वोटर आईडी, अगर एसटीएससी से किसान आते हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र, इससे संबंधित दस्तावेज उनके लगते हैं।
सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा अभी लंपी स्किन डिसीज की जो बात हो रही है, जिन पशुपालकों के पास जानवर है और वो उनकी देखरेख में, उनका तो पता चल जाता है कि ये लंपी स्किन के मरीज है या नहीं, किंतु जो आवारा जानवर रोड पर घूमते, यदि उसमें लंपी स्किन के केस प्राप्त होते हैं तो उसे कैसे खोजा जाए, और इसके लिए आपके विभाग के माध्यम से क्या?
जो भी आवारा पशु हैं, अगर उनमें इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो जो भी संबंधित क्षेत्र है, जैसे ग्राम पंचायत में है या नगर परिषद क्षेत्र में है, तो नगर परिषद क्षेत्र में जो वहाँ के नगर पालिका के कर्मचारी जो है ना, वो उनको गौशाला ले जाते हैं, फिर हम उनको वहाँ पे क्वारंटाइन करके उसको ट्रीटमेंट करते हैं उन जानवरों का।
नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था सर जी कि इनका पता कैसे लगा है कि ये बीमार है या नहीं?
वो जो भी संबंधित क्षेत्र के जो भी व्यक्ति उसको देखते हैं या हमको जानकारी मिलती है किसी भी माध्यम से, फिर हम उस पर फिर कार्रवाई करते हैं।
सर, आज हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो विषय है गांव आजीविका और हम
जी,
तो हम आपसे और ये जानना चाहेंगे कि अभी मौसम जो है नरम गरम है, ग्रीष्म काल है, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम नरम गरम है, तो इसका प्रभाव जानवरों पर कितना पड़ रहा है, पशुओं पर?
जी, क्या है, जब भी मौसम अचानक से परिवर्तित होता है तो जरूर ही जो दूध देने वाले पशु हैं या और भी पशु हैं, उनपे जरूर इन पे विपरीत पड़ता है। जनरली अभी देखा गया है कि मौसम कुछ ठंडा पड़ रहा है तो अभी जो पशुओं में निमोनिया से संबंधित जो है बीमारी अभी दिखाई दे रही है। अभी
तो ऐसे समय में आप पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से पशुपालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
बस पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो उनके आवास का होता है ना। अगर हम पशुओं को रखरखाव के लिए उचित आवास, उचित उन्हें हवा, उचित उन्हें धूप मिले, उचित आहार मिले, तो पशुओं को रोगों से रोकथाम हमें काफी मदद मिलती है।
और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि वर्तमान में जो आपके स्टॉक में जो कर्मचारी है उनकी संख्या बहुत कम है, तो ऐसी इसमें गौ सेवकों की क्या भूमिका है?
गौ सेवकों को हम लोग जो भी हम लोग जैसे टीकाकरण है ना, या विभाग से संबंधित जो भी कार्य हमारे रहते हैं, जब हमको कैंप लगाना रहता है तो हम उनका मदद लेते हैं क्षेत्र में कार्य करने के लिए।
अभी जो लंपी वायरस का जो प्रकोप छाया हुआ है, इसमें क्या गौ सेवकों की भूमिका आपने निर्धारित की है?
जी, अभी जैसे क्षेत्र में लास्ट टाइम भी लंपी का बहुत ज्यादा प्रकोप आया था, तो उस टाइम में सरकार की तरफ से निर्देश थे कि जो भी जिस भी क्षेत्र में लंपी के ज्यादा केसेस है उसके आसपास हम लोग वैक्सीनेशन करें। तो हम लोगों ने ये गौसेवक का यूज करके क्षेत्र में वैक्सीनेशन कराया, क्योंकि क्षेत्र में विभागीय कर्मचारियों की बहुत कमी है, तो हमें गौसेवकों का मदद लेनी पड़ती है।
सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब आप गौसेवकों की मदद लेते हो तो शासन के द्वारा उनको कुछ मानदेय दिया जाता है या नहीं?
नहीं, अभी तो उनको कोई मानदेय नहीं है, लेकिन जैसे केंद्र सरकार की तरफ से NIP योजना है और जो FMD वैक्सीनेशन चलता है, तो उसमें उनको वैक्सीनेशन करने हेतु और NIP में अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान करने हेतु उन्हें मानदेय मिलता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, कि आपने गांव आजीविका विषय पर महत्वपूर्ण बातों पर अपनी राय रखी। इसके लिए मोबाइल वाणी आपका धन्यवाद करता है।
जी, धन्यवाद।